इसलिए इस प्रकार से आप लोग धारणा करेंगे। अब यहाँ पर भागवत की कथाएं होंगी और आगे आप लोग खूब सावधानी के साथ में सुनेंगे। एक कीर्तन करो तो
छाया है कृष्ण अंगों में। है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, प्रीतम है
गए तो नारद जी ब्रज में पधारे, नंद भवन में आए और आकर के देखा कृष्ण को, अरे स्वयं भगवान नंद बाबा के घर में पधारे। बस नंद बाबा को और यशोदा मैया को कहीं फूल पुष्प लाने के लिए भेज दिया और कृष्ण की स्तुति करने के बाद में कृष्ण ने इनको किशोर उम्र जैसी अवस्था में इनको दर्शन दिया। ये गदगद हो गए। वहां से गदगद होने के बाद वहां से राजभवन से निकले, सोचा कृष्ण अकेले नहीं आ सकते, शक्ति को छोड़कर के नहीं आए, कहीं इनकी लाडली शक्ति, स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति कहीं न कहीं जरूर प्रकट भी होगी। इसलिए ब्रज के चारों तरफ में खोजते हुए, अनुसंधान करते हुए ढूंढने लग गए। शीघ्र ही वो खोजते 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 रावल में पहुंचे। उस समय बरसाना छोड़ करके विश्वभानु महाराज पत्नी के साथ में रावल में ठहरे गए। वहां पर आकर के विश्वभानु महाराज से मिले और पूछा, आपके घर में कोई संतान तो नहीं हुई? वो खुश होकर के बोले, हाँ उसके एक संतान है। क्या हुआ? बहुत ही सुंदर एक पुत्र हुआ है, श्याम वर्ण का, दिखाओ तो सही। पुत्र को ले आए, उनके चरणों में दे दिया और उन्होंने खूब आशीर्वाद दिए। कहे और कुछ संतान है कि यही? एक बेटी थी। मैं उनसे बतला सकते हो वो बेटी कैसे हुई? रोज सवेरे जाते थे जमुना जी में स्नान करने। आज सवेरे जब गए 15 दिन के बाद में, जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद में जो अष्टमी होती है जिसको अब राधाष्टमी कहते हैं, उसी दिन में जमुना जी में गए स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में, और कमलों के ऊपर में खेलती हुई एक छोटी सी बालिका को देखा। वो पैरों को ऐसे ऐसे नचा रही और कभी अपनी पत्नी इनको कृतिका देवी के, ये बेटी को तुम अच्छी तरह से पा। तो वो नारद जी जब आए तो विश्वभानु महाराज ने कहा, हाँ एक पुत्री थी गई, भीतर में ले गए उनको दिखलाने के लिए। जब मैं दर्शन करना चाह, उस बेटी को मैं आशीर्वाद देखना चाहता हूँ, और मैं तो जानते हो मैं जो जी जानता हूँ उसके हाथ और ललाट की रेखाओं को देख करके बतला दूंगा ये कैसे नक्षत्र में, कैसे शुभ घड़ी में, कौन कौन से फलों से जुटती ये पैदा हुई। बड़े प्रसन्न हुए और लेकर के गए। कहा ऐसा करो, थोड़ा सा जमुना जल ले आओ, दूध की घास, पुष्प, हरिद्रा, चंदन, आतपचाओ, नारिकल, ये सब ले आओ। उनको ऐसे बहाना बना करके वहां से जब वो कौशल से जब चले गए हाथ जोड़ करके और उनकी स्तुति स्तव करने लगे। जब स्तुति स्तव करने लगे इतनी में ललिता इत्यादि सखियां वहां पर प्रकट हो, अरे देखो देखो एक क्षण में ये अब ये अंतर ध्यान हो जाएंगे, देखो तो इधर। तेजी आग पर के खोल करके देखा, परम किशोरी अत्यंत रूपसी, समस्त गुणों की खान, कृष्ण आकर्षण इस राधा जी। देखते ही यही स्तव स्तुति करें में अंतर ध्यान, बड़े दुखी हो गए। ललिता इत्यादि सखियों ने बतलाया, सौभाग्य तुम्हारा यह है एक क्षण के लिए झलक दर्शन मिली। अधिक दर्शन करना चाहते हो तो गोवर्धन की तराई में जाओ, वहां पर राधा कुंड और गोवर्धन के बीच में एक सुंदर सरोवर है, आजकल उसको नारद कुंड कहते हैं। वहां पर जाकर के और तुम आराधना करो, मंत्र बतला देती हूँ, मंत्रों को बतला और उसी राधा मंत्र को लेकर के वहां पर आराधना करो। पीछे उनका दर्शन हुआ कि नहीं हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, किंतु हाँ आराधना कर रहे हैं, राधा जी का दर्शन करना सबके लिए संभव। ऐसे राधा जी को वहां पर आविर्भाव हुआ वहां रावल, अब वहां पर भी बधाई बज रही है। कैसी बधाई बज रही है? क्या रटना लगाई रे राधा नाम की,
मैंने
बाल लीलाओं का समय किया
उतना को मारा उतना को मारा शक्तासुर को मारा त्रिनासुर त्रिनावर्त का वध किया। शक्तासुर गाड़ी गाड़ी के ऊपर में जैसे भार ला देते हैं उसी प्रकार से असुर लोग विद्या का भार अपने ऊपर में वहन करते हैं। कहते हैं माता पिता की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं, भगवान नाम की कोई चीज नहीं, खाओ पियो मौज करो कि ट्रेन टाइम दी। पितरों का श्रद्धा करने का जरूरत क्या है, छत पर पिताजी बैठे हुए हैं और यहाँ से मंत्र से दे दो तो उनको मिल जाएगा। ऐसी ऐसी मनोहर युक्तियों के द्वारा लोगों को भ्रष्ट करते हैं। विशेष करके आजकल का राजनीतिक के लोगों को देखते ही हैं किस प्रकार से लोगों को उधर ही में लेकर के चले जा रहे हैं। तो ये सब युक्तियों को जानने वाले शास्त्रों को पढ़ने पर भी शक्तासुर के अवतार ऐसे शक्तासुर का ये वध करते हैं कृष्ण। और एक होता है सारग्राही, एक होता है भारग्राही,
भारवाही,
भारवाही भार को ले चलने वाले, ये भार को शास्त्र रूपी भार को ले चलने वाले शास्त्र भी पड़े रहते हैं। कभी ये लोग क्या करते हैं, कभी जवाहरलाल को कह देंगे ये तो कृष्ण से भी बढ़ करके हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग। कभी कह देंगे इंदिरा गांधी तो लक्ष्मी जी से भी बढ़ करके हैं। इस प्रकार से युक्ति से विद्वान होने पर भी, भागवत पढ़ने पर भी, भागवत भूषण होने पर भी उनको कोई कांड ज्ञान नहीं रहता, ऐसे लोगों को सत्ता शुरू करते हैं। कृष्ण इन लोगों को पहले ही वध करते हैं। यह पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था, इसने एक बार कोई ऋषि जा रहे थे, दुर्वासा ऋषि दुर्वासा जा रहे थे, उनको बड़ा तंग करता था तो उन्होंने उसको अभिसंपात कर दिया, जाओ तुम असुर हो। फिर वो गिर करके उनके चरणों में प्रार्थना करने लगा। अच्छा लोमस ऋषि के अभिशाप, उन्होंने कहा अच्छा तेरा अभिशाप मैं बदल करके वर दे देता हूं, तुम अभी कृष्ण वायु सत्वनंतर के समय में आएंगे और गोकुल में जन्म लेंगे, उस समय उनके स्पर्श से ही तेरा कल्याण हो जाएगा। इस तरह से उसका उद्धार। दूसरा था तृणावर्त। तृणावर्त क्या है, तृण का अवर्त, हवा को हवा चला करके और तृण को उड़ा दिया, धूलि को उड़ा दिया और सबको ठक दिया, अंधकार में बदल दिया। भगवान नहीं है, भगवान की क्या जरूरत, हम ही लोग भगवान हैं। भगवान की सृष्टि तो मनुष्य करता है, शास्त्र झूठे हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है, भगवान की पूजा की जरूरत नहीं, भागवत पढ़ने से क्या होगा, कोई जरूरत नहीं है। भगवान की पूजा करने की अपेक्षा फुटबॉल खेलना और स्वास्थ्य ठीक रखना ये बहुत अच्छा है, क्या जरूरत है भगवान, मनुष्यों ने ऐसे सृष्टि कर दी। इस तरह से जो कहने वाले हैं ये तृण उड़ा करके लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करके अंधकारमय बना देते हैं। ये पूर्व जन्म में क्या था, सहस्त्रार्थ नाम का एक राजा था, सहस्त्र अक्ष आंख वाला राजा, बड़ा विषय भोगों में प्रमत्त रहता था। एक दिन दुर्वासा जी कहीं जा रहे थे और देखा अपनी स्त्रियों के साथ में लग्न होकर के काम क्रीड़ा में मत है, फंसे जाओ, तुमको मैं दिखता नहीं हूं, आदमी दिखते नहीं, तुमको लज्जा हाया बिहाया नहीं, तू अंग रहित हो जाए, तुमको शरीर ही लगे। बड़ा दुखी उनके चरणों में गिर गया, साधुओं का स्वभाव है पिघल जाते हैं। अच्छा तुम भी दूसरे जन्म में आएगा, कृष्ण गोकुल में जन्म लेगा और उस समय तुम उनके मरने की बहाने से उनके श्री अंग को लेकर के आकाश में उड़ेगा और उस समय तेरे उनके चरणों का तुमसे स्पर्श होगा और ये सब अभिशाप से मुक्त हो जाएगा। कृष्ण को लेकर के आकाश में उड़ा, कृष्ण उसके गर्दन में अपने हाथों को डाल दिया और हाथ देकर के जरा थोड़ा सा आकाश मार्ग में विचरण किया और विचरण करने के बाद में थोड़ी सी गला दबा दिया आंखें रसगुल्ला जैसे निकल आई, और यदि मर गया तो कृष्ण कहे मैं क्या करूं, तुमने जबरदस्ती हमको उठा लिया और आकाश में घुमाने लगा, और यदि मैंने तुम्हारा गला पकड़ लिया और उसमें तुम मर जाते हो तो मैं क्या करूं। इस तरह से कृष्ण नर्लीला का अतिक्रम किए बिना ही सब असुरों का ध्वंस किया। इसमें भी बड़ी बड़ी सब शिक्षाएं भी हैं और उनका लीला विरोध भी है, प्रेम का नवीनीकरण भी है। कल आगे की कथाएं होंगी, कृष्ण का बाल्य चरित्र होगा, उसमें विशेष करके गोकुल में शंकर जी आएंगे बैल पर चढ़ करके कृष्ण का दर्शन करेंगे, मैया उसको दर्शन नहीं कराएगी। इसके बाद में दामोदर लीला होगी, किस प्रकार से जसोदा मैया उनके हाथों को और कमर को दुखल से बांधती हैं, इस प्रकार से और सब यहाँ से फिर गोकुल से फिर वृंदावन में आएंगे। यहाँ पर काली दमन इत्यादि की समस्त लीला कल आप लोग होगा, आप लोग ठीक समय पर 8-7 बजे ही यहाँ पर प्रस्तुत हो जाएंगे। कृष्ण की बड़ी बड़ी मधुर लीलाएं होंगी, यही साधन बजाने श्रवण करने से और कुछ करने की जरूरत भी नहीं, वो तो पीछे की बात है, श्रवण करने से ही। आज अभी एक कीर्तन करके आरती होगी, आरती के बाद
गुरु प्रेमानंदे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरत्विषे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, केश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते प्रणमामि हरिभ्यो। हा देविका कूभर गदगदयाद्यवाचा जातिनिपत्तभूमि दण्डवत बुद्भटार्थी अस्य प्रसादमबुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके तव वन्दनीयम्। अङ्गश्यामलिङ्गशताभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्डं जागुडरोति संविदधतमपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितजलभुजं ध्यायेन् रामो भक्त्याभिहीनाय पराधल चेत्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणाय गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान। तवैवास्मि तवैवास्मि नजुमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय माम चर। लोगों के 6 दिन हरि कथा संपन्न हुई, आज 7th दिवस प्रारंभ हो रहा है। कृष्ण का आविर्भाव और जन्म दोनों हुए हैं। कृष्ण जब 30 दिन के हुए तो यशोदा मैया उनका जन्मदिन मनाने के लिए उन पर पलंग पर पौढ़ा रही थी और कृष्ण अभी तक इतने समर्थ नहीं थे कि पास करवट फेर सके। और इसी बीच में पूतना शकटासुर अघासुर इत्यादि का वध भी कर दिया किंतु पास नहीं मोड़ सके। जन्म का उस संबंध था, उसी समय में सब स्त्रियां आई थीं और उन्होंने जब करवट थोड़ा सा फेर दिया पहली बार, यशोदा जी को बड़ा आनंद हुआ और सब स्त्रियों को आनंद हुआ और मंगल गान इत्यादि करने लगे। तत्पश्चात कृष्ण और थोड़े बड़े होने लगे, गोपियां सब जुट जाती, दर्शन के बहाने घर का काम धंधा छोड़ देती, कभी गोदी में लेती कभी कुछ करती और ये भी धीरे धीरे चांद की कला की भांति में बड़े होने लग गए। जितने बड़े हो रहे हैं इनका सौंदर्य निखर रहा है। गूं-गूं करने लगे अब। बलदेव जी का जन्म का उल्लेख मिलता है किंतु श्रीमद् भागवत में वैसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। बलदेव जी का जन्म कितना 8 दिन पहले हुआ किंतु जब तक कृष्ण से वो मिले नहीं आंख बंद किए हुए रहे, घर से निकाले नहीं गए। एक तो कंस का भय और दूसरे जब तक कि कृष्ण से नहीं मिलेंगे तब तक ये कुछ भी नहीं करेंगे, चुपचाप निर्जीव जैसा पड़े रहते। अब कृष्ण को जब पलने में रखा गया तो यशोदा मैया ने बलदेव को भी उसी पलने में रख दिया। जिस समय पहली बार वो मिले होंगे तो कैसे मिले होंगे, दोनों ने बच्चों ने दोनों को पकड़ लिया।
श्री कृष्ण बलदेव की जय।
ठीक, उन्होंने आंखें खोल दी, अब सचमुच में वो बलदेव बन गए। तब से एक मिनट के लिए उनकी मैया इधर उधर नहीं करती, रोहिणी जी को ही घर का सब काम करना पड़ता। यशोदा मैया बच्चों की रक्षा में सब समय लगी रहती। इस तरह से दोनों मिल करके उन बच्चों को संभालने लगी। धीरे धीरे दांत उठे दूध वाला। जब दतुली निकल आई तो अब कुछ कुछ माँ माँ बा बा इत्यादि करने लगे। अस्फुट तुतली बोली कितनी मधुर उनकी होगी, सब ब्रज के लोग आश्चर्यचकित रह जाते। घर का काम धंधा सब भूल करके वहां पर चले। धीरे धीरे और थोड़े बड़े हुए, मैया उनको सुने के लिए थपथपी लगाती और लोरियां सुनाती तब उनको नींद आती। मैया की तरफ में मुख देख करके लोरी सुनने के लिए और उनको आग्रह थोड़ा थोड़ा करने लगे अस्फुट शब्दों। मैया एक दिन उनको लोरी सुना रही, मुझे वो गान तो याद नहीं आ रहा उसका भाव बतला रहा। वो लोरी सुनाते सुनाते और बच्चे को ऐसे थपथपी दे रही हैं और सुला रही हैं। एक राजा था, कृष्ण का जो हूँ हूँ करना जान गए हैं और कुछ अब समझने भी लगे। गोपियाँ कहती ये क्या है, मयूर को देख करके कहा ये क्या है, तो पहले ऐसा नहीं, पहले कहती जैसे मयूर को देखो तो जो कहाँ है तो ऐसे दिखलाती, छतरी ले आओ तो जो छतरी को पकड़ ले, सील कहाँ है पहुंच जाए, पीढ़ी लाना तो इस तरह से सब घर के जितने भी सोहारी सोहानी सोहनी लाना तो सोहनी मैंने क्या झाड़ू, इस तरह से सब चीज का नाम, पिता माँ बहन ये सब कहना सिखलाया। तो एक दिन लोरी सुना रही हैं, एक राजा थे उनका नाम दशरथ था, उनको चार लड़के हुए बड़े सुंदर सुंदर, बड़े का नाम राम, छोटे का नाम भरत, और छोटे का नाम लक्ष्मण, और छोटे का नाम शत्रुघ्न करते चले। जब बड़े हुए तो पिताजी ने उनको वनवास दे दिया, पिता और छोटी मैया अपनी भार्या सीता जी को लेकर वन में गए। एक दैत्य दानव आया और उसका नाम था रावण, वो सीता जी को चोरी कर ले। बस जो ही सुना तब कहते लक्ष्मण लक्ष्मण जल्दी मेरा धनुष लाओ, और जो आंख अब सुने सुनो को आ रही थी झट पलंग से कूद करके नीचे एकदम, और लक्ष्मण धनुष लाओ आवेश आ। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र की बाल्य लीला का हम प्रणमन करते हैं। और थोड़े बड़े होने लगे, यशोदा गोदी में खिला रही है, दूध पिला रही है, दूध पिलाते पिलाते जम भाई आई, यशोदा जी ने देखा मुख में अखिल विश्व ब्रह्मांड सब देवता लोग विष्णु इत्यादि सब, यहाँ तक कि अपने को और कृष्ण को भी उसी के अंदर में देखा, ये क्या हो गया, या तो इसको डाकिनी ने या पिशाची ने इसको पकड़ लिया या मुझे पकड़ लिया, या कोई देवता की माया क्या है, आंख बंद करके ऐसे करने लग गई। हो न हो किसी बुरी छाया है, फिर उन्होंने दांत बंद कर दिए, देवकी जैसा हाथ जोड़ करके प्रणाम करके स्तव स्तुति नहीं करने लगे। सोची जब कुछ अनिष्ट हुआ, इसलिए ऋषियों को महर्षियों को पुरोहित को बुलाया, काली गैया लाई गई, उसी के गोबर और मूत्र में उसे घोलकर रक्षा मंत्र वो पढ़ाने लगी, और गैया का पूछ लगा करके झाड़ने लगी। ललाटे केशवम रक्षेत नारायणम रक्षेत मथोदरे, इस तरह से सब अंगों में उनकी रक्षा की। और ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसे ये ठीक नहीं होगा, जितने ब्राह्मण ब्रज में हैं सबको खिलाना पड़ेगा और दक्षिणा देना पड़ेगा। मैया को और भी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनको खीर पूड़ी लड्डू इत्यादि खिलाए और उनको दक्षिणा दी। और भी कुछ बड़े होने लग गए। एक दिन अब छोटे छोटे बालकों के साथ में नंग धड़ंग पास ही में ब्रह्मांड घाट वहां पर खेलने गए। खेलते खेलते बाल स्वभाव अवस्था जैसे बच्चे होते हैं, उन्होंने मिट्टी का एक ढेला थोड़ा सा लिया और आंख बचाते हुए बच्चों का और मुख में दे लिया, मुख बंद कर दिया। सीधाम झपटा और बोले ये क्या कर रहा। उसने जाकर के दाऊ जी से कहा, दाऊ जी ने कहा मट्टी नहीं खाते, पेट में कीड़े पड़ते हैं। उन्होंने कहा मैंने मिट्टी कहाँ खाई, मैंने मिट्टी नहीं खाई। सब लड़के उनको मना कर रहे हैं और ये मान नहीं रहे, कह रहे नहीं हमने नहीं खाई।
सीताम गया घर में, मैया से कहा, मैया ये तो मिट्टी खाने लग गया। मिट्टी खाता है? अच्छा, विश्वास नहीं हुआ। दाऊ जी आए, दाऊ जी ने कहा जैसे ये मिट्टी खा रहा है, आज इसने मिट्टी ब्रह्मांड घाट पर खाई। तो जब कृष्ण आए तो हाथ में एक लठिया ले ली, बोले तू मिट्टी खाता है, तूने क्या किया आज? तो मैया, कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं किया? आ तो कुछ नहीं किया, तूने मिट्टी नहीं खाई? तो हूँ, मैंने नहीं खाई। तो ये श्रीदाम कह रहा है, आज श्रीदाम को हमने पटक दिया नीचे और इसलिए वो बिगड़ करके हमको ऐसा कह रहा है। और बच्चे लोग हमसे, सभी लोग हार जाते हैं इसलिए सबने उसका पक्ष लिया और हमारे पक्ष में कोई नहीं बोलता। अच्छा, तो दाऊ जी तो झूठ नहीं बोलेगा, वो तो परम सत्यवादी है। उन्होंने कहा जैसे मैया तुम जो को विश्वास, ये नहीं कहा जो झूठ बोलता है कि क्या, बात बदल दी और कहे मैया तुमको विश्वास नहीं है तो मेरा मुख देख ले। अच्छा, तो आ जाओ ले करके, और मुख दिखलाया। मुख में देखा फिर अखिल विश्व ब्रह्मा, इस बार और अच्छी तरह से देखा, कितने लोग, कितने ब्रह्मांड, कितने क्या, जैसे आकाश में तारे हैं ऐसे सब ब्रह्मांडों को मन देखा। उसमें गर्भोदशाई विष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु और जो तत्व हैं सब लोगों को देखा, शंकर को देखा, ब्रह्मा अग्नि तो ब्रह्मा इत्यादि को देखा। आंख बंद करके फिर से देखा, जी मैं क्या देख रही हूं, ये नहीं आया कि ये भगवान है। अर्जुन ने मुख में देखा ना, उनका विश्व रूप देखा, हाथ जोड़ करके कांपने लग गए। और यशोदा मैया कहीं कोई हाकिनी डाकिनी या कुछ है, ये ऐसा क्यों देख रहा है, या तो इसको लग गई या मुझको लग गई। उन्होंने जाकर के नारायण के सामने प्रार्थना कर रही, ये मुझे क्या हो गया, मैं देख रही हूं। फिर से ऋषियों को बुलाया गया, पुरोहित को बुलाया गया, और फिर उसी तरह से काली गैया को बुलाकर और उसके पूंछ से गोबर और मूत्र दे करके उनको अभिषेक करके स्नान करा करके पवित्र किया। इस तरह से बाल्य लीलाएं कर। अब कुछ और बड़े हो गए, अब कुछ अपने कुछ चलने लगे हैं, उनको घर के भीतर में रखना बड़ा मुश्किल हो गया। कभी शरण बैठा रहता बाहर में, बस दोनों भाई पहुंच जाते, कोई उसके पीठ पर चढ़ जाते, कोई सिंह पकड़ लेता, कोई मुख उसका पकड़ लेता, और वो बेचारा भोला भाला बैठा रहता। कभी कुत्ते के मुख में हाथ डाल दे, कभी कुछ, एक दिन देखा सर्प को ही पकड़ रखा, एक दिन तलवार रखी थी सामने, बस खेलते खेलते जाकर के तलवार पकड़ लिया। एक दिन पास ही में घर के चारों तरफ में गांठे रख दिए जाते हैं, आजकल तो प्राचीर होती है घरों के बाहर, और प्राचीर पहले होती थी कांट इत्यादि लगा दिया जाता, बाड़ा जिसको कहते हैं लगा दिया। अब उसके ऊपर में फूल खिले हैं, लताएं उस पर चली गई हैं और उस पर फूल खिले हैं। कृष्ण बलदेव जी गए, अब कैसे फूल खोलें, वो थोड़ा बीच में था, बड़ी मुश्किल से कृष्ण ने धीरे धीरे किसी प्रकार से उसके अंदर में कांटों को उठा करके घुस गए, फूल तो ले लिया। अब फूल लेने के साथ कांटों को जो उठाया था वो नीचे गिर गया, रास्ता बंद हो गया, और वहीं पर चिल्लाने मैया मैया मैया। मैया के कानों में जब शब्द पड़ा, दौड़ करके, अरे ये क्या, कांटों के बीच में कैसे ये पहुंच गया, अच्छा तो ठीक है, आज तुम्हें पीट करके दुरुस्त करूंगी। बलदेव बाहर में खड़ा है चुपचाप, भोला भाला सपक रहा, और मैया बड़ी मुश्किल से फिर लोगों को बुला करके कांटों को हटा करके मारू। तो कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए, पर जब नहीं करेगा तो नहीं करेगा। एक दिन घर के अंदर में सो रहे हैं, एक आती है फल विक्रयणी, मैं जिनको कह रहा हूँ उसके आगे पढ़ना, उसको दोबारा मत करना, समय बच जाएगा। फल विक्रयणी आई, सुना जे ब्रज में नंद को लाला हुआ, भया है, भयो है, भयो है, खूब सुंदर लाला, कितना छैल छबीला और कितना सांवरा लड़का है, जो ही देखता है उसका मन मोह लेता है। तो वो रोज नंद बाबा के महल के चारों तरफ में आवाज लगाती, आवाज लगाते लगाते ऐसे भ्रम में पड़ जाती, भूल जाती, फल्लो फल्लो नंदलो नंदलाला लो नंदलाला लो, हाँ गोपाल लो
गोविंद लो माधव लो,
हाँ ऐसे कहने लगती। और टोकरी हो सकती थी टेढ़ी होकर के गिर न जाए, उनको ऐसा अभ्यास होता है, ब्रज की महिलाओं को भी ऐसा अभ्यास होता है, खड़े पर खड़े रख दिया और हाथ ऐसे ही चल रही हैं, खड़ा पकड़ना नहीं पड़ता, ऐसे ही उस पर रख रखा है और भाव में मग्न हो रही है। किंतु कृष्ण दर्शन नहीं, जो देखना नहीं चाहता उसको तो दे देते हैं दर्शन, आज जो देखना चाहता है ना उसको और वैसे दर्शन ही नहीं। कोई खाने के लिए देगा तो नहीं लेंगे, घर में पहुंच करके चोरी करेंगे, तो वो देखना चाहती किंतु वो दर्शन नहीं देंगे। कभी या तो स्वयं मिलते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। आज सोचा कि आज जा रही हूं, या तो हमारा प्राण ही वहां रहेगा या उसके दर्शन नहीं, आज बिना दर्शन किए लौटेंगे, एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। और यदि आएगा तो उसके हाथों में फल भर दूंगा, तो दूंगी बहुत सुंदर सुंदर आम केले अमरूद बेल इत्यादि, सब अच्छे अच्छे अंगूर संतरे इत्यादि फलों से भर लिया और चले। आज सचमुच में उसकी भी छटा निराली, अब वो फेरे लगा करके फिर दरवाजे पर ही बैठ गए और वही कृष्ण फल्लो फल्लो कृष्ण लो कन्हैया लो गोपाल लो करने लगे। इतने में कृष्ण से अब रहा नहीं गया, उठ करके वो दौड़ करके घर से गेहूं का दाना लिया, छोटी सी हथुली, और गेहूं उठाया, राशि लगी हुई थी गेहूं की, उसमें से उठाया और उठाने से नीचे से छिद्रों से सब गिर गया, दो एक गेहूं का दाना उसमें बड़ी मुश्किल से अटका होगा वहां पर।